لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني يشر أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال: والله بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ایک آیت تو سورہ حجرات کی وہی آیت ہے جس کے حوالے سے گزشتہ دو مجالس ہوئی تھی، اور دوسری آیت کی تلاوت آج اس لیے بھی کی گئی کہ مرحوم فصیح بھائی کے سوئم کی مجلس اس مجلس میں شامل ہو گئی ہے، اور جو ہمارا سورہ حجرات کی آیت کی روشنی میں موضوع اب بن گیا اس میں بھی اس آیت کو سمجھنا اور اس کے پیغام پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک مختصر سی تاریخی بات. عجب، یہ کوئی بہت پرانی تاریخ نہیں ہے، 40 سال پہلے کی تاریخ. ایک بہت ہی مختصر سی تاریخی بات بیان کرتے ہوئے آیت کا ترجمہ کروں. جب سے میں نے مجالس پڑھنا شروع کی، اگرچہ موضوعات بہت زیادہ تھے، پیغمبر کی سیرت پہ 215 تقاریر ہیں، ائمہ طاہرین کی سیرت ہے، علماء کی سیرت ہے، امام زمانہ کے حوالے سے اتنے سارے اشرے پڑھے، مختلف تقاریر ہوئیں، مجالس ہوئیں، اور ساتھ ساتھ موت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی تھی. باقی ساری باتیں تو لوگ ہمیشہ سے بھول جاتے تھے، صرف یہ یاد رہتا تھا کہ یہ موت کے بارے میں بہت پڑھتے، اور موت کے بارے میں جب پڑھا جاتا ہے تو یقیناً مولا کا فرمان تو ذہن میں رہے گا کہ اے ہمارے شیعوں، قیامت کے دن کے بارے میں اتنا نہ ڈرنا، لیکن قبر کا عذاب تو اللہ نے بنایا ہی شیعوں کے لیے، تو وہ زیادہ یاد دلانا پڑتا ہے کہ دیکھیں وارننگ آ گئی ہے معصوم کی جانب سے کہ عذاب قبر تو ہے بنیادی طور پہ صاحبان ایمان کے لیے، اصل دوسروں کو بھی ملے گا، لیکن بنیادی اعتبار سے اس کا مقصد پرائمری پرپس تھا صاحبان ایمان. تو یہ چیز ذہن میں رکھ کے یاد دلانا پڑتا تھا. تو میں قبر والا باپو بھی بنا، میں ڈراکولا اسلام بھی بنا، میں ملا عذاب بھی بنا، میں جہنم کا داروغہ بھی بنا. اب یہ تو عام لوگوں کی بات، یہ تو کہیے کہ الحمدللہ اس زمانے میں یہ فیس بک وغیرہ نہیں تھے، اور اس طرح کے ہمارے گروپ نہیں بنا کرتے تھے انٹرنیٹ پہ. 1971, 72, 73 میں تو چیزیں تھی بھی نہیں، ورنہ تو شاید اتنے نگیٹو پروپیگنڈے میں دب کر مجھ جیسا انسان بھی ختم ہو جاتا. آپ ذرا سا جسم وغیرہ دیکھ رہے ہیں نا، تو میں دب کے ختم ہو جاتا. اس وقت جب پروپیگنڈا ہوتا بھی تھا تو وہ اتنا محدود ہوتا تھا، اتنی اس کی سرکولیشن نہیں ہوتی. تو اب ایک سوال یہ تھا، کچھ لوگوں نے محبت میں اور خلوص میں بھی بات کی کہ مولانا آخر ان موضوعات پر، تو ایک تو وہی جواب جو میں نے شروع میں دے دیا کہ جی میرے موضوعات بہت زیادہ، ایک ہی چیز آپ نے اس میں سے چن کے نکال لی ہے، باقی ساری باتیں بھی. اور ایک جواب یہ ہے کہ قرآن کریم जो साहिबान ईमान के लिए बहुत बड़े बड़े तीन मसले, बहुत बड़े बड़े तीन मसले, बल्कि ये जो मैंने जुमला कहा कि मोमिन के लिए बड़े बड़े तीन मसले, जरा सा इसको बदल दूं, आखिरी जमाने के मोमिन के लिए जो तीन बहुत बड़े मसले, हर जमाने के मोमिन के लिए है लेकिन आखिरी जमाने का मोमिन उसके लिए जो तीन बहुत बड़े बड़े मसले, उनमें से पहले मसले का सोल्यूशन कुरान ने यह बताया और यह है वही सूरह तकासुर की आयत का तर्जमा। तो अब मैं जवाब दे रहा हूं उन लोगों जो खुलूस के साथ मोहब्बत करते हैं, दोस्ती रखते हैं, मजालिस में शरीक होते हैं। बात हो रही है 74 की, बात हो रही है 75 की, लेकिन ये सवाल कर रहे हैं कि मौलाना इस टॉपिक पर अगर बिल्कुल बात न की जाए, जिस चीज को मैंने अपनी सफाई में पेश किया वो उसी को दलील बना रहे हैं। ये जो मौलाना आपने कहा कि मैंने इतने और मौजूदात पे भी बात की, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास दूसरे सब्जेक्ट हैं बहुत सारे, तो आप उसी पर रहिए। न हो आदमी के पास कुछ कहने को, सिर्फ यही बातें हो अजाब की तो ठीक है, बर्दाश्त कर दिया जाए, ये बेचारे के पास और कुछ है ही नहीं, है तो कुछ भी नहीं मेरे पास, लेकिन जितना बहुत जिहालत के आलम में ये बातें पढ़ता था अजाब की, उतनी दूसरी बातें भी थी। तो कहा कि उसी पे रहिए, आखिर क्या जरूरत है आपको लोगों की गालियां खाने, और क्या जरूरत है इतनी मुखालिफत की। तो कुरान करीम सोल्यूशन बता रहा, अब दवा तो देना पड़ेगी, चाहे मरीज तबीब से राजी हो के राजी ना हो, और आप लोगों का और हमारे मसले में एक फर्क है, और वो ये है कि कयामत में हमारी गर्दनें पकड़ी जाएंगी। आपका तो अजाब कब्र का मसला था, कयामत में तो आप बहुत आराम से ये कह के छूट जाएंगे कि परवरदिगारा हम तो 10 दिन मुसलसल आल मेहंदी में गए थे, ये आए थे, इन्होंने हमारा 1-1 घंटा लिया, बल्कि कल की रात तो 1.5 घंटा ले लिया, और उसके बाद इन्होंने तो हमें कुछ बताया नहीं, हम क्या करें। वाकान आपका ये वैलिड एतराज कबूल किया जाएगा। तो अब मसला हम लोगों का ये है कि हम आपको तो जवाब दे नहीं, अल्लाह को जवाब दें। कुरान करीम इस आयत में हमारे और आपके बहुत बड़े मसले का सोल्यूशन पेश कर रहा है। अच्छा, मैंने दो जुमले आज के मजलिस में कह दिए, मोमिन का बहुत बड़ा मसला ये, और फिर मैंने कहा कि आखिरी जमाने के मोमिन का बहुत बड़ा मसला ये। तो पहले तो पैगंबर की वो हदीस जहां पे एक सवाल हो रहा कि या रसूल अल्लाह, ये जो आपके चाहने वाले और आपके मानने वाले पैगंबर, तो इस्लाम लेके तो पैगंबर आए हैं, शरीयत का निजाम लेके तो पैगंबर आए, बुनियादी एतबार से रसूल की और इमाम की ड्यूटीज अलग अलग, फिर भी इमाम दोनों ड्यूटीज अंजाम देते हैं, लेकिन बुनियादी एतबार से रसूल है मुबल्लिग, इमाम है हाफिज, पैगंबर का काम है तबलीग करना यानी दीन को अल्लाह से लेके बंदों तक पहुंचाना, और इमाम का काम है इस दीन की हिफाजत करना, वो मुहाफिज है और वो मुबल्लिग है। तो या रसूल अल्लाह, जो दीन, जो शरीयत, जो निजाम आप लेके आ रहे हैं, आखिर आपकी जबान से ये सुनने के बाद लोगों पे असर क्यों नहीं हो रहा, जिन पे असर हो भी रहा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं, वो भी आखिर चलते चलते सीधे रास्ते से हट जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर सीधे रास्ते से हट जाते हैं। गुनाह हर इंसान के साथ लगे हुए, तो क्या रसूलुल्लाह के जमाने में गुनाह नहीं होते थे? होते। इस्लाम की वो सजाएं के जिससे बहुत ज्यादा एतराज है, उनमें से मसलन स्टोनिंग, रजम या संसार करना, रसूल के जमाने में इस पे अमल हुआ, तो बड़े बड़े गुनाहगार भी थे। तो या रसूल अल्लाह, आखिर आपकी जबान से भी सुनने के बाद, हम जैसे जाहिलों की जबान से सुना और मजमे पे असर न हुआ तो बात समझ में आ जाती, लेकिन रसूलुल्लाह, पहले मासूम से मैं बात कर रहा हूं और आखिरी मासूम तक बात को पहुंचाऊंगा, हर हर मासूम का रेफरेंस नहीं दूंगा, लेकिन पहले और आखिरी मासूम। तो वजह क्या, आखिर ये हमसे गुनाह और गलतियां और खताएं क्यों होती हैं, आपके होते हुए भी और आपसे मोहब्बत करने के बावजूद और आपकी बात कबूल करने के बावजूद, भाई अबू लहब से गलतियां हो, अबू जहल से गलतियां हो, वलीद है, उदबा है, शहबा है, एक लंबी लिस्ट, तो समझ में आता। अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अबू जहल के बारे में नाज़िल हुआ कि ठीक, लेकिन जो आपको मानकर कलमा पढ़ चुके, तो पैगंबर ने एक जवाब दिया था कि जिसके अंदर एक फार्मूला बता दिया कि हुब्बु दुनिया रासो कुल्ले खतिया, जितने भी खताएं और गलतियां, देखिए गुनाह तो बहुत बड़ी चीज है, छोटी छोटी गलतियां भी, कहा कि इस सब की जड़, इस सब का जो रूट कॉज है, रासो कुल्ले खतिया, हर गुनाह की बुनियाद दुनिया की और माल की मोहब्बत है। ये बाकी सारे गुनाह जो है ना वो इसी से पैदा होते हैं, ये गुनाहों की मां है, ये गुनाहों का असल सबब है। अब ये हदीस पैगंबर की आखिरी जमाने के लिए नहीं, ये उस टाइप की हदीस नहीं है कि आखिरी जमाने का फितना ये होगा कि औरतें अपनी सवारियां चलाएं। मुझे मालूम था कि बाद खवातीन को ये जुमला बहुत ताज्जुब में डाल देगा, बात जो मजलिस से सुन रही और जो सिर्फ अकीदत में सफे अजा पे आके बैठती हैं, मजलिस के बीच में दुनिया भर की बातें भी हो जाती हैं उनकी बातें, लेकिन जो सुन रही है ताज्जुब में। इसीलिए मैंने तीन बार ये लफ्ज दोहराया कि इस हदीस में कहीं ये नहीं कहा गया कि ये अमल हराम, कहीं ये नहीं कहा गया कि ये अमल इसको कंडेम किया जा रहा। लफ्ज फितना आया, उसकी तशरीह तो बाकी है मेरे ऊपर, लेकिन क्योंकि अभी मजलिसें भी बाकी हैं तो इंशाल्लाह वो अपने मौके पर तशरीह होगी। तो पैगंबर वो हदीस इरशाद फरमाई है कहकर के ये आखिरी जमाने के लिए, आखिरी जमाने में हज करने वाले रियाकारी के लिए हज पे जाएंगे, ये हदीस इरशाद फरमाई है कहकर के ये आखिरी जमाने के लिए। लेकिन ये जो हदीस हुब्बु दुनिया रासो कुल्ले खतिया, ये हर जमाने के लिए, तो हर जमाने के मोमिन का मसाला ये कि उसे गुनाह से बचना है अगर वो इमाम का मानने वाला, और गुनाह हो जाते तो आखिर क्यों होते, इसका असल सबब क्या, सबसे बड़ी चीज क्या है, तो कहा हुब्बु दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। जो दुश्मनान इस्लाम हो, दुश्मनान अहले बैत ने, अकली बात है कि जो रूट कॉज है ना उसे जाके खत्म करो, फिर बाद के प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। बचपने में ही, बल्कि बचपना भी, पैगंबर के वालिद हजरत अब्दुल्ला शहीद किए गए, क्यों आखिर, उस वक्त तक तो पैगंबर पैदा भी नहीं हुए थे। जनाब अब्दुल्ला रसूल खुदा के वालिद मदीना मुनव्वरा से होते हुए, जो उस वक्त मदीना नहीं कहलाता था, यसरिब कहलाता था, शाम जा रहे हैं और मदीने में शहीद किया गया, क्यों आखिर, उनसे किसी को क्या इख्तलाफ और क्या दुश्मनी, बल्कि अब्दुल्ला तो खैर, अब्दुल्ला के भी वालिद शैबतुल हम्द, आखिर उनका नाम छुपाकर अब्दुल मुत्तलिब का नाम उनको क्यों दिया गया, शैबतुल हम्द असली नाम है। चुनाचे आज भी तमाम मुज्तहिदीन अपनी किताबों में एक जुमला लिखते हैं कि जब भी आदमी खाने खुदा की जियारत के लिए जाए, चाहे हज के लिए, चाहे उमरे के लिए, और चाहे वहीं का रहने वाला है मक्के का और खाली जियारत करना है, बाबे बनी शैबा से जाए, बनी शैबा शैबा की औलाद, तो शैबा है कौन, जिनकी औलाद वाले जिस दरवाजे से आती और जाती है उससे आज तक 1400 साल नहीं 1600 साल हो गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी 125 साल से ज्यादा थे। आज जो अभी मैं बीबीसी की रिपोर्ट देख रहा था कि 115 साल मैक्सिमम इंसान की एज हो सकती, चाहे साइंस कितनी ही तरक्की कर ले इससे ज्यादा नहीं, और एक्सेप्शनल केस में 125 बार, 125 के लिए भी 10,000 प्लेनेट को ढूंढेंगे तब एक आदमी ऐसा मिलेगा। हजरत अब्दुल्ला की उम्र, हजरत अब्दुल मुत्तलिब 125 साल, चुनाचे 1400 साल को इस्लाम तो हुए ही, उनसे भी पहले की बात 1600 साल। ये जो दरवाजा है जिससे हरम में दाखिल होना आज भी मुस्तहब, तमाम मुज्तहिदीन की किताब, अभी आपको मरहूम आगा खुई की भी हज की किताब मिलेगी, इमाम उम्मत इमाम खुमैनी की भी हज का रिसाला मौजूद है, आयतुल्लाह सिस्तानी की भी हज की किताब है, रहबर आयतुल्लाह खामिनाई की भी, सब में देख ली आज 1600 साल के बाद। तो ये तो खैर एक अलग बहस है कि ये मुस्तहब क्यों, घर के मुस्तहबात तो मुस्तहबात, वाजिबात में भी ये सवाल नहीं हो सकता कि क्यों, लेकिन बाद वाजिबात हो मुस्तहबात में इसका जवाब खुद से दिया गया। तो अब ये बाबे बनी शैबा से दाखिल होना मुस्तहब क्यों, क्यों वो एक अलग मौजू, बात कहीं से कहीं चली जाएगी, लेकिन जो दरवाजा है ये दरवाजा आखिर बाबे बनी शैबा, शैबा की औलाद, शहबा हैं कौन?
हजरत अब्दुल मुत्तलिब।
असली नाम शहबतुल हमद है। अब्दुल मुत्तलिब तो नाम इसलिए मिला कि अपने चचा मुत्तलिब के साथ ये मक्के में आए थे, और तो लोग समझे कि इनके चचा कहीं से गुलाम खरीद के ला रहे हैं। कहा कि ये तो मुत्तलिब का गुलाम आया है, बड़ा अच्छा गुलाम है, बहुत ही ग्रेसफुल पर्सनैलिटी थी बचपने से। लेकिन ये नाम जो मक्के वालों ने गलतफहमी में इनको दिया, नाम भी नहीं दिया, वो तो एक दूसरे को न्यूज दे रहे थे। तुमने देखा कल हाशिम के छोटे भाई मुत्तलिब गुलाम लेकर आए, अब्दुल मुत्तलिब को देखा, यानी मुत्तलिब का गुलाम। इस्लाम ने इसी नाम को रखा, और इस्लाम आने से पहले क्यों? इसलिए कि इनकी आइडेंटिटी छुपाना, इनका नाम शहबा छुपाना, का ये अब्दुल मुत्तलिब नाम चल पड़ा तो इसी को चला। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ एक वजह से, वो अहले किताब जिनकी किताबों में पैगंबर की पेशीन गोई थी कि आखिरी जमाने में एक नबी पैदा होने वाला है, और वो ये करेगा जिसका सबसे बड़ा नुकसान हमको होगा, वो पैगंबर से दो नस्ल पहले से ये साजिशें कर रहे हैं कि रसूल आखिरी नबी, इनको रोकने का बेहतरीन तरीका यह है कि इनके बाप को ही खत्म कर दो। बाप ही ना रहे तो फिर बेटा कहां से दुनिया में आएगा? और उनसे पहले की जनरेशन ने कहा कि दादा ही को खत्म कर दो। बहुत पुरानी ये कहानी हो गई और बहुत लंबी बात हो गई, लेकिन कहने का मकसद ये कि ये अपनी चीज है कि मां को खत्म कर दो, बाप को खत्म कर दो, मसाले की जड़ ही ना रहे तो बाकी मसाले पैदा नहीं होंगे। अब ये है दुश्मनों की तरफ, जनाब नरजिस खातून को इतने सीक्रेट तरीके से इमाम के घर में क्यों पहुंचाया गया? भाई एक आदमी शादी कर रहा, शादी तो बहुत ज्यादा एक पर्सनल मैटर, मगर जिस अंदाज से नरजिस खातून को छुपा के लाया गया कि उसमें उनकी तौहीन भी हो गई, और ऐसी तौहीन के आज जब कोई जला भुना दुश्मन अहले बैत खड़ा होता है तो ये इतराज को फौरन जोड़ देता कि आपके अहमद ताहिरीन, देखिए क्योंकि मुझे ये जुमला आज कहना था तो आज इसीलिए मैंने जानबूझ के खुतबे तकहीरा वाली आयत को भी इस्तेमाल किया कि वो हमारा अकीदा, वो कहते जी कहां का अकीदा, आपके अहमद ताहिरीन तो सब कनीजों की औलाद है। नऊज बिल्ला, क्योंकि जनाब शहर बानो भी कनीज बन के बजाहिर मदीने आई थी, और जनाब नरजिस खातून भी कनीज बन के सामर्रा आई। तो अब वो तो खैर उनका एतराज, उसका जवाब ये एक बिल्कुल अलग मौजू, और अभी भी ये चीज रिपीट होती है, क्योंकि आलम इस्लाम में बहरहाल गुलामी और कनीजी के हवाले से अभी तक लोगों के जहन में बुनियादी मसले हैं। वैसे में तो ये चीज की कोई अहमियत ही ना रही, लेकिन वहां तो ये है ना कनीज की औलाद। तो अब यही जवाब होता है कि नहीं थी वो बादशाह की बेटी, लेकिन दुश्मनों से उनको छुपाने और बचाने के लिए बजाहिर कनीज बना के लाया गया। लेकिन क्यों? कहा कि आखिरी इमाम को जो रोकना चाह रहे, वो आखिरी इमाम की विलादत से पहले मीटिंग करके इस नतीजे पे पहुंचे कि मां ही का खात्मा कर दो, जब माना होगी तो बेटा कहां से पैदा हो। देखिए अब ये आखिरी रसूल, इनके बाप का खात्मा कर दो, आखिरी इमाम इनकी मां का खात्मा कर दो, लेकिन बहुत ही सिमिलर है रसूल और इमाम के हालात, आखिरी रसूल आखिरी इमाम, लेकिन दोनों का खुलासा ये कि बाप और मां से ही नस्ल आगे बढ़ती है, अगर आगे की नस्ल को मिटाना तो बाप और मां को खत्म करो। पैगंबर ने कहा हर गुनाह पैदा होता है माल की मोहब्बत, ये जितने गुनाह हैं ये औलाद है, ये नस्ल है, वो तो दुश्मनों की साजिश थी, नाकाम भी की अल्लाह ने, मगर ये शैतान की साजिश है कि हमें गुनाह में नहीं ले जाएगा, माल की मोहब्बत दिल में पैदा करेगा। माल की मोहब्बत पैदा करने के बाद फिर वो कहीं जाके आराम से टांग पे टांग रख के बैठ जाएगा, अब उसे कुछ नहीं करना। माल की मोहब्बत आ गई, अब खुद ब खुद गुनाह उससे पैदा होंगे। अब ये पैगंबर की हदीस को बहुत आसान अल्फाज में कहने की मैंने कोशिश की, लेकिन क्योंकि हमारा मौजूद जैसे जैसे आगे बढ़ रहा, वो चीजें सामने आएंगी जो ईमान को खत्म करने वाली है, तो सवाल यही होगा कि उन चीजों को कैसे रोका जाए। पहले जड़ का खात्मा करो। अब ये हदीस हर दौर के मुसलमान और मोमिन के लिए, लेकिन फिर आखिरी जमाने के लिए मैंने कहा कि सबसे बड़ी मुसीबतों में से एक मुसीबत ये माल की मोहब्बत। ये तो वो जुमला है जिसे मैंने अपने भोंडे अल्फाज में तर्जमा करके या उसका इंटरप्रिटेशन करके आपके सामने पेश किया। जुमला क्या है कि आखिरी जमाने के मोमिन को बहकाने के लिए दज्जाल जो तीन हथियार लेके आएगा या तीन टूल लेके आएगा जिसके जरिए वो बहकाएगा, उसमें सबसे पहला माल वो कान का मैल निकाल के रोटी में रख के रोटियां देगा। ये सारी गुफ्तगू वही है माल के हवाले। तो दज्जाल पहले जमाने के मोमिन का मसाला नहीं, दज्जाल दरमियानी जमाने के यानी छठे ईमान के जमाने के मोमिन का मसाला नहीं, दज्जाल दसवें ईमान के जमाने के मोमिन का मसाला नहीं, दज्जाल इमाम जमाना की इमामत के शुरू जमाने के मोमिन का मसाला नहीं, दज्जाल आज के मोमिन का मसाला है अगर ये आखिरी जमाना। तो दोनों चीज पूरे इस्लाम को भी देखें तो माल मोहब्बत, माल की मोहब्बत, और अगर खास आखिरी जमाने के मोमिन को भी देखें, जो हमारी दुआ है कि अल्लाह करे हम ही आखिरी जमाने के मोमिन हो। जमाना बहुत टफ होगा लेकिन दुआ, क्योंकि जब पैगंबर ने आखिरी जमाने की 15 निशानियां मौला को बताई तो मौला फिर ये आखिरी जिंदगी में फिर वो इस्लाम के लिए, यही ज़ैनब कुबरा, इतनी दौलत है ज़ैनब के घर में, सोने और चांदी के ऐसे ढेर है। भाई ज़ैनब की शादी अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार से हुई, आलम इस्लाम का सबसे मालदार इंसान अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार। देखिए कितना अपने आप को रोक रहा हूं, फिर भी दो चार जुमले तशरी वाले जबान पे आ रहे हैं, जबकि मुझे यह ख्याल है कि मैंने पिछले दो साल में बहुत ये सारी चीजें पढ़ी, बेशक आना पड़ी हो लेकिन मजमे ने कहीं ना कहीं से सुन ली है। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार इतने मालदार कि कनाडा में तो आपको यह सुनने का मौका नहीं मिलता होगा, पाकिस्तान इंडिया में IMF से हुकूमत लोन लेती, वर्ल्ड बैंक से हुकूमत लोन लेती, अब वो जो एशियन बैंक बना लोन लेती, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार की दौलत इससे भी ज्यादा थी। जब कभी इस्लामी हुकूमत को जो मुआविया चला रहा डेफिसिट होता था या खजाने में कमी आती थी, इंतजार था कि रेवेन्यू आएगा लेकिन अभी तो नहीं है ना, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार लोन देते हैं। ये एक पर्सन दूसरे पर्सन को लोन नहीं दे रहा, ये एक आदमी पूरे आलम इस्लाम के बैतुल माल को चला रहा। फिर देख तेरे लाल कैसा मातम करते, कैसा जिहाद करते। ज़ैनब ने सुना ओन मोहम्मद को लेके चल, हुसैन के करीब आई, कहा हुसैन मेरी यह तमन्ना और ख्वाहिश है कि आप मेरे लाल भी जाके शहादत दें और मारे जाएं। मैं बात को आज मुख्तसर कर रहा हूं क्योंकि ऐसे ही जुमले जनाब कासिम के हवाले से भी शहजादी ने कहे थे, तो कल ये बात आ जाएगी ओन मोहम्मद बहन की यह ख्वाहिश है। हुसैन ने कहा ज़ैनब तूने आके कहा मैं इजाजत दे रहा हूं, मगर जैसे ही ओन मोहम्मद चलने लगे पहले तो ज़ैनब ने इनको रोक लिया और कहा कि भैया इस तरह से नहीं, बहुत छोटे हैं मेरे बच्चे 9 साल 10 साल, मगर जाएंगे अपने बुजुर्गों की शान दिखाते हुए। और यह कहे कि जिस खेमे में सामान रखा था वहां से दो अमामे लेके आए और एक अमामा हुसैन को दिया, का हुसैन पहचानता है ना ये इनके दादा जाफर तैयार का अमामा और उनको ये अमामा पहना, और दूसरा अमामा आगे बढ़ाया हुसैन तू तो अच्छी तरह जानता है ये इनके नाना हैदर कर्रार का अमामा है, ये मोहम्मद को पहना। एक को दादा जाफर तैयार की छवि बनाया, एक को नाना हैदर कर्रार की छवि बनाया और कहा बेटा खाली अमामा मत पहन बल्कि ये ख्याल कर कि तू नहीं जा रहा जाफर तैयार जा रहे हैं, और बेटा मोहम्मद तू नहीं जा रहा हैदर कर्रार जा रहे, ऐसा जिहाद करना कि लश्कर यजीद ये पुकार उठे। बच्चे इतने छोटे थे कि खुद से घोड़े पे बैठ भी नहीं सकते थे, एक को गोद में लेके हुसैन ने बिठाया, एक को गोद में लेके अब्बास ने बिठाया और जाफर तैयार हैदर कर्रार की छवि एक बार मख्तल में आगे बढ़ी जिहाद और वाकन वो जिहाद कि दुश्मन पुकार उठा कि अरे ये तो लग रहा है मौता के मैदान में जाफर तैयार आ गए, खैबर के मैदान में हैदर करार आ गए। उमर साद ने कहा कि है मेरे सिपाहियों, इस तरह ये शहजादे नहीं मारे जा सकते, इनको अलग अलग करो। दोनों साथ जिहाद कर रहे हैं। एक बार सारी फौज ने हमला किया लेकिन हमला शहीद करने के लिए नहीं किया, दोनों को अलग करने के लिए किया। दोनों अलग हुए, फिर वो जंग का इख्तिताम, एक तरफ और घोड़े से जमीन करबला पे गिरे, उधर मोहम्मद जमीन करबला पे गिरे, और हर शहीद की शहादत पर लश्करे यजीद में खुशी के शादियाने बजते हैं और खेमे में बैठी हुई सैदानियां समझ जाती हैं हमारा शहजादा मारा गया। एक बार इधर खुशी के शादियाने बजे और उधर खेमे में सारी बीबियां ज़ैनब कुबरा के पास आ गई, शहजादी हम आपको आपके बेटों का पुरसा देने आए हैं। ये खुशी के शादियाने बता रहे आन और मोहम्मद मारे गए और उधर ज़ैनब ने जुमला कहा जिसे मिर्जा दबीर ने मरसिए की बैत बना दिया, बाजे वालों की सदा जेरे कनात आती है, कैसे लाशें मेरे बच्चों की बारात आती है, बीबियों मुबारक हो मुझे मुबारकबाद दो, मेरे शहजाद मेरे लाल सुरखरू हुए। और इतनी देर में एक बार लाशा लेके हुसैन आए, एक लाशा लेके अब्बास आए, ये लाशें जमीन पे रखे। बहरहाल ज़ैनब माँ है, आगे बढ़ी, देखा कि ऑन मारा जा चुका है, ऑन दादा हैदर नाना हैदर करार के पास पहुंच गया लेकिन मोहम्मद अभी जिंदा है, आखिरी सांसें ले रहा है। एक बार ज़ैनब का दिल भराया, झुकी, मोहम्मद को कलेजे से लगाया, देखा मेरा मोहम्मद कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। एक बार अपने कान मोहम्मद के मुंह के करीब ले गई, एक ही जुमला कह रहा है, अम्मा अब तो हमसे राजी हो गई, अम्मा अब तो हमसे खुश हो गई, हमने तेरे दूध का हक अदा कर दिया। ऑन मोहम्मद का मातम, ज़ैनब कुबरा को पुरसा दीजिए, आज दुआ नहीं है, अपनी जगह से खड़े हो जाइए और इन शहजादों का मातम शुरू कर दीजिए।
नारे ने कहा मारे आगे किनारे मामू पे फिदा हो गए ज़ैनब के दुलारे दरिया के किनारे फिजा ने कहा नो मोहम्मद गए मारे दरिया के किनारे सुन कर ये सदा सानी है दहरा ये पुकारी अम्मा गई वारी अम्मा गई वारी अम्मा गई वारी चा से ही मेरे लाडले दुनिया से सिधारे दरिया के किनारे फिजा ने कहा मोहम्मद गए मारे दरिया के किनारे देखेंगे ना पानी की तरफ आंख उठा के वादा था ये माँ से
वादा था ये माँ से
वादा था ये माँ से